लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि शिक्षक विश्वसनीय गवाह बने, प्रतिस्पर्धा के बजाय भ्रातृत्व सिखाएं और सबसे कम उम्र के लोगों एवं सर्वाधिक कमजोर लोगों की मदद करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवार के कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी की चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते हैं जो सदैव प्रेरितिक कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कार्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, एवेंजेली गौडियम का तीसरा अध्याय सुसमाचार के घोषणा के बारे में जिक्र करता है। ख्रिस्तियों के रूप में हम में से प्रत्येक जन अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करने हेतु बुलाए गए हैं। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में प्रवचन की महत्वपूर्णता पर जिक्र करते हुए कहा कि यह एक अति महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए हमें अपने में एक लंबी तैयारी की जरूरत है। संत पापा फ्रांसिस इसकी तैयारी करने पर जोर देते और इसके संबंध में अपना सुझाव हमें देते हैं। हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में कहा कि एक उपदेशक जो तैयारी नहीं करता, ऐसी बात नहीं कि वह आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वह अपने को मिले ईश्वरीय उपहारों के प्रति ईमानदार और उत्तरदायी नहीं रखता है। श्रोताओं, प्रार्थना में पवित्र आत्मा के आह्वान उपरांत पहला कदम है धर्म ग्रंथ के संपूर्ण पदों में पूर्ण ध्यान देना, जो हमारे लिए प्रवचन का आधार है। जब कभी हम रुकते और विशेष अध्याय के संदेश को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम सच्चाई का सम्मान करने का अभ्यास करते हैं। यह हृदय की नम्रता है जो हमें इस बात की अनुभूति प्रदान करती है कि ईश वचन हमसे परे जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपने में यह अनुभव करते हैं कि ना तो हम इसके स्वामी या धारक हैं, बल्कि हम इसके संरक्षक गण, संदेश वाहक और सेवक हैं। नम्रता का यह मनोभाव और आश्चर्य में वचन की आराधना की अभिव्यक्ति इसके अध्ययन हेतु समय देने में होती है, जहां हम इसे अत्यधिक सावधानीपूर्ण ढंग से और पवित्र भय में करते हैं, जिससे हम इसे विकृत ना करें। धर्म ग्रंथ के पदों की व्याख्या देने हेतु हमें धैर्य में बने रहने की जरूरत है। अपने को दूसरे सभी सोच विचारों से दूर रखते हुए इसमें रुचिकर ढंग से और पूर्ण एकाग्रचितता में ध्यान देने की जरूरत है। हमें बाकी अन्य चिंताओं को अपने से दूर रखने और एक शांतिमय वातावरण का निर्माण करने की जरूरत है। धर्म ग्रंथ के पदों का अध्ययन करना अपने में व्यर्थ होगा यदि हम शीघ्र, सहज और तुरंत ही एक परिणाम की आशा करते हैं। प्रवचन की तैयारी करना हमसे प्रेम की मांग करती है। हम अपना समय उन लोगों या चीजों के लिए समर्पित करते हैं, संत पापा कहते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं। और यहाँ हम उस ईश्वर के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिन्हें हम प्रेम करते हैं, एक ईश्वर जो हमसे बातें करने की चाह रखते हैं। इस प्रेम के कारण हम इसमें जितना चाहें समय ले सकते हैं, जैसे कि हर सच्चा शिष्य कहता है, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। श्रोताओ, प्रवचन की तैयारी के संबंध में सर्वप्रथम हमें इस बात को निश्चित करने की जरूरत है कि हम उन शब्दों के अर्थ को समझते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। संत पापा कहते हैं कि यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा जो हमारे लिए स्पष्ट प्रतीत होता है, लेकिन जिसके बारे में हम सदैव ध्यान नहीं देते हैं। धर्म ग्रंथ के वचन जिसका अध्ययन हम करते हैं हमारे लिए 2 या 3 हजार साल प्राचीन है। इसकी भाषा हमारे लिए आज की भाषा से, जिसे हम अपने बोलने में उपयोग करते हैं, बहुत अलग है। यद्यपि हम अपने में यह सोचते हैं कि अपनी भाषा में अनुवादित हम उन शब्दों को समझते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम पवित्र रचयिता के द्वारा कही जाने वाली बातों को सही तरीके से समझते हैं। साहित्यिक विश्लेषण द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न उपकरण जो हमारे लिए स्पष्ट जान पड़ती हैं, जैसे कि वे शब्द जिनकी पुनरावृत्ति हुई है, जिन पर जोर दिया गया है, किसी पाठ की संरचना और विशिष्ट संचालन की पहचान, विभिन्न पात्रों द्वारा निभाई गई भूमिका पर विचार इत्यादि। लेकिन हमारा उद्देश्य पदों में निहित सभी चीजों को विस्तृत रूप में समझना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य मूल संदेश की खोज करना है, वह संदेश जो पाठ की संरचना और पदों में समाहित है। यदि उपदेशक यह प्रयास नहीं करता है तो उसके उपदेश में कोई एकरूपता और सामंजस्य नहीं होगी। उसे जो कहना है वह दूसरों को प्रेरित करने में असक्षम, विभिन्न असंबंधित विचारों का एक संग्रह मात्र होगा जो दूसरों के लिए प्रभावकारी नहीं होगा। मुख्य संदेश जिसे रचयिता दूसरों को प्रसारित करना चाहते हैं, यह हमसे इस बात की मांग करती है कि हम लेखक के विचारों से अपने को वाकिफ करें, इसके साथ ही उस प्रभाव को भी जिसे वे दूसरों के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई पद की रचना सांत्वना के लिए लिखी गई है तो उसका उपयोग गलतियों के सुधार हेतु नहीं करना चाहिए। यदि यह प्रबोधन के रूप में लिखी गई है तो इसका उपयोग धर्म सिद्धांत के लिए नहीं किया जाए। यदि यह ईश्वर के विषय में शिक्षा देने हेतु लिखी गई है तो इसका उपयोग ईश शास्त्रीय विचारों को प्रसारित करने में ना किया जाए। यदि यह प्रेरितिक कार्यों के समन या प्रशंसा स्वरूप लिखी गई है तो हम इसका उपयोग नवीनतम सुसमाचार के विषय में बातें करने हेतु ना करें। श्रोताओ, निश्चित रूप में संदेश के मूलभूत अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए हमें चाहिए कि हम पदों को धर्म ग्रंथ की शिक्षा के अनुरूप सुनियोजित करें जिसे कलीसिया हमें प्रदान करती है। यह धर्म ग्रंथ को परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो इस बात को स्वीकार करती है कि पवित्र आत्मा धर्म ग्रंथ के सिर्फ किसी एक भाग को आलोकित नहीं करते, बल्कि पूरा धर्म ग्रंथ उनकी प्रकाशना है और कुछ भागों में विश्वासी गण अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अपने को ईश्वर की योजना में विकसित होता पाते हैं। यह गलत या आंशिक व्याख्याओं को भी रोकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उस पाठ के खास भाग और विशिष्ट बात को कमजोर करें जिसका प्रचार करने के लिए हमें निमंत्रण मिला है। एक थकाऊ और अप्रभावी उपदेशक के दोषों में से एक यह है कि वह घोषित किए गए पाठ की आंतरिक शक्ति को प्रसारित करने में असक्षम होता है। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
तेरा वचन प्रभु सुंदर मधुर देता है मन को तेरा एहसास, चारों दिशाओं में तेरी वाणी गूंजे छेड़े हर मन के तार।
तेरा वचन गगन में, तेरा वचन पवन में, तेरा वचन चमन में, तेरा वचन मेरे विमन में, तेरा वचन गगन में, तेरा वचन पवन में, तेरा वचन चमन में, तेरा वचन मेरे विमन
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। चालीसा काल के पहले सप्ताह यानी 26 फरवरी से शुक्रवार 3 मार्च तक संत पापा फ्रांसिस एवं परमाध्यक्ष रोमी कार्यालय के सभी कर्मचारी एक आध्यात्मिक साधना में भाग ले रहे हैं। आध्यात्मिक साधना में भाग लेने के कारण इस सप्ताह संत पापा फ्रांसिस के सभी कार्यक्रम एवं परमाध्यक्ष रोमी कार्यालय के कार्य स्थगित कर दिए गए हैं। पिछले माह वैटिकन प्रेस कार्यालय ने जानकारी दी थी कि पोप ने रोम में रहने वाले सभी कार्डिनलों, वैटिकन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और रोमन कुरिया के सुपीरियर गणों को निमंत्रण दिया है कि वे इस सप्ताह को एक प्रार्थना सप्ताह के रूप में व्यतीत करें। इस सप्ताह 1 मार्च को आम दर्शन समारोह समेत संत पापा के सभी कार्यक्रम स्थगित होंगे। उनके सार्वजनिक कार्यक्रम रविवार को देवदूत प्रार्थना के साथ पुनः शुरू होंगे। संत पापा ने रोमन कुरिया के शीर्ष अधिकारियों से आध्यात्मिक साधना की अवधि को व्यक्तिगत रूप से करने का आग्रह किया है। अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना को सुगमता से कर पाने के लिए उन्होंने उनसे अनुरोध किया है कि वे अपनी काम की गतिविधियों को स्थगित करें। पोप फ्रांसिस अगले 28 से 30 अप्रैल को हंगरी की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। इस खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एस्तेर गोम्बुटा पेस्ट के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल पीटर एर्तो ने उनके स्वागत हेतु अपनी अपार खुशी व्यक्त की है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में स्थिर गोम्बुटा पेस्ट के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल पीटर एर्तो ने 28 से 30 अप्रैल तक पोप फ्रांसिस की आगामी प्रेरितिक यात्रा के लिए महान खुशी पर चर्चा की है, जबकि यात्रा के महत्व को यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि पर स्वीकार किया है। हंगरी में संत पापा फ्रांसिस की यह यात्रा उनकी 41वीं प्रेरितिक यात्रा होगी। सोमवार को वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने घोषणा की कि देश का दौरा करने के लिए नागरिक और कलीसियाई अधिकारियों के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पोप प्रेरितिक यात्रा करेंगे। साक्षात्कार में कार्डिनल एर्तो ने पोप की यात्रा के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और अपनी अपेक्षाओं को साझा किया, जिसमें यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि भी शामिल है। उन्होंने बतलाया कि पोप फ्रांसिस का हंगरी लौटना क्यों महत्वपूर्ण है और बच्चों के साथ संत पापा की मुलाकात के कार्यक्रम पर भी प्रकाश डाला। 3 दिवसीय यात्रा में संत पापा शरणार्थियों एवं गरीब लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ धन्य लाजरो बेथाने स्टेटमन संस्था के बच्चों से भी मिलेंगे। हंगरी के आधे से अधिक लोग ख्रिस्ते हैं और करीब 37% लोग कैथोलिक।
स्थानीय समाचार पत्रों के अनुसार यूक्रेन में युद्ध के शुरू से ही करीब 1 मिलियन यूक्रेनी नागरिक हंगरी में शरण लिए हुए हैं। पोप फ्रांसिस ने रोमानिया की यात्रा के दौरान हंगरी के विश्वासियों के प्रति अपनी निकटता दिखाई थी, जब रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में लोकप्रिय हंगेरियन तीर्थ स्थल चसिक सोमालिया पर ख्रिस्त त्याग अर्पित किया गया था। ट्रांसिल्वेनिया कभी हंगरी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1920 में रोमानिया क्षेत्र बन गया। रोमानिया में हंगेरियन जनजाति के कुल 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। कार्डिनल एर्दो ने कहा, संत पापा की हंगरी यात्रा का समाचार पाकर हमें बड़ी खुशी हुई। हमने उन्हें बुडापेस्ट की कलीसिया, हंगरी की कलीसिया के रूप में उन्हें आमंत्रित किया है और हम एक प्रेरित यात्रा के लिए उनका स्वागत करना चाहते हैं। पिछली बार उन्होंने हमारे शहर का दौरा अंतर्राष्ट्रीय यूखारिस्टी कांग्रेस के समापन ख्रिस्त्याग का अनुष्ठान करने के लिए किया था। वह एक छोटी मुलाकात थी, जबकि एक प्रेरित यात्रा विश्वासी समुदाय के साथ मुलाकात की चाह वर्षों से है, इसलिए यह एक अपार हर्ष की बात है। संत पापा का हंगरी आना क्यों महत्वपूर्ण है? इस सवाल के उत्तर में कार्डिनल ने कहा, खासकर इसलिए क्योंकि वे हंगरी के विश्वासियों से मुलाकात करेंगे। 2021 का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय घटना थी, जिसमें 83 देशों के तीर्थयात्री, धर्माध्यक्ष, पुरोहित और विश्वासी उपस्थित थे। इस बार संत पापा हंगरी के निवासियों को, हमारे लोगों को, हमारे स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे। यह हमें सम्मान एवं बड़ी खुशी प्रदान कर रहा है। कार्डिनल ने शरणार्थियों के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, युद्ध का समाचार, जिसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई है और पूरा साल चलता रहा है, इसका अर्थ है हमारे लिए बहुत अधिक दुख, क्योंकि हम हरेक दिन शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विभिन्न समुदायों में हमने लगातार शांति जुलूस की एवं यूक्रेन तथा रूस को माता मरियम को समर्पित किया, जिसके लिए संत पापा फ्रांसिस ने हमें आमंत्रित किया था। हमने इसे संत स्टेफन के महागिरजा घर में, जहां उनका पौत्र अवशेष है, वहां की, क्योंकि संत स्टेफन ने हजारों साल पहले पहली बार ऐसा किया था। इतिहास के अनुसार पूरे देश को माता मरियम को समर्पित किया था। कार्डिनल ने कहा, सबसे पहले हमें शरणार्थियों की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हमारा देश 10 मिलियन से कम आबादी वाला देश है और पिछले 1 साल में यूक्रेन से 1.5 लाख से अधिक शरणार्थी आए हैं। निश्चित रूप से वे सभी हंगरी में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन 10 से 15% शरणार्थी यहीं रुक गए। इस प्रकार पहली चुनौती थी मानवीय सहायता देने की। हमने सीमा पर और बुडापेस्ट में दोनों ही स्थलों पर राष्ट्रीय कारितास, धर्म प्रांतीय कारितास और उद्धार पल्ली दलों द्वारा शरणार्थियों का स्वागत किया। इसमें माल्टा के शूरवीरों ने भी सहायता पहुंचाई। उन्होंने बतलाया कि उसके बाद विश्वासियों ने स्वतः मदद देना शुरू किया, पल्लियों, कलीसियाई संस्थाओं एवं व्यक्तिगत रूप से। संत पापा ने कहा है कि सभी की सेवा के लिए हमें एक अलग अर्थव्यवस्था का सपना देखने का साहस होना चाहिए। बेल्जियम कार्तिक साप्ताहिक पत्रिका तेजस्यो में संत पापा के साथ साक्षात्कार को प्रकाशित किया गया है। साक्षात्कार में संत पापा फ्रांसिस ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है, जैसे द्वितीय वैटिकन महासभा से वर्तमान की सिनोडल प्रक्रिया तक, यूक्रेन में जारी युद्ध से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में भुला दिए गए युद्ध तक। खासकर उन्होंने आर्थिक विकास के एक नए मॉडल के विस्तार का आह्वान किया है, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ता है। निकारागुआ के प्रशासन ने क्रूस रास्ता की पारंपरिक धर्म विधि को सार्वजनिक रूप से करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और धर्माध्यक्षों पर गंभीर अपराधों और आतंक का आरोप लगाया है। निकारागुआ में कार्तिक कलीसिया एवं सरकार विरोधियों के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई में दानियल और तेग्गा की सरकार ने देश के सभी पल्लियों में परंपरागत रूप से 40 साल के दौरान की जाने वाली क्रूस रास्ता को सार्वजनिक रूप से संपन्न करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्रूस रास्ता की धर्म विधि 40 साल के दौरान और पुण्य शुक्रवार के दिन गिरजाघर के अंदर संपन्न की जाएगी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।